हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर ने अपने आदमियों से कहकर जोया और रिया को अपनी गाड़ी से घर भिजवाने का ऑर्डर दिया था। अबीर का ड्राइवर उन दोनों को लेकर निकल चुका था। जोया और रिया आराम से गाड़ी में बैठे थे, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि तीसरी आँख के थ्रू कोई उन्हें देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अबीर राठौर था। और कैमरे थोड़ा ऊंचाई पर होने की वजह से जोया की चेस्ट का ऊपरी भाग साफ दिखाई दे रहा था। जोया ने खुद को कवर करने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसे तो लगा था वहाँ रिया और उसके अलावा और कोई नहीं था। जोया आज जो कुछ भी हुआ था उसी के बारे में सोचे जा रही थी। रिया ने कहा, जोया दी, अबीर राठौड़ उतना बुरा भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। आपने देखा, उसने आपका इलाज कराया। जोया, मैं इस वक्त उस अबीर या किसी और के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आई जस्ट नीड रेस्ट, ऐसा कहकर जोया ने आंखें बंद कर लीं। वहीं अबीर राठौर जोया का हर मूवमेंट अपने सामने लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा था। अबीर उस वक्त अपने शानदार बंगले के प्रोजेक्शन रूम में बैठा था, और उसने उस गाड़ी में लगे कैमरे को उसने अपने बड़े से प्रोजेक्शन में ऐड कर लिया था। वो उसे घूरे जा रहा था। अचानक आंखें बंद किए हुए जोया को एहसास हुआ कि शायद उसे कोई देख रहा था, और उसने अचानक से अपनी आंखें खोल लीं। रिया, क्या हुआ दी, आप इतना क्यों घबरा रही हो? जोया, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई घूर रहा है। रिया, ओ दी, लगता है इतनी सी देर में आंख लग गई आपकी और आपने कोई ख्वाब देख लिया। भला इस गाड़ी में आपको कौन घूरेगा, और वैसे भी यहाँ केवल हम लोग हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रिया ने जोया का अंदेशा दूर करते हुए कहा। रिया के कहने पर जोया मान तो गई थी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। जोया ने फिर भी अपने कपड़े ठीक किए, और जो उसके गले के पास का उसका बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा था उसने अच्छे से अपने दुपट्टे से ढक लिया। वहीं जोया को अपने आप को कवर करते देख अबीर राठौर के फेस पर एक स्माइल आ गई थी, और वो स्क्रीन और जूम करके जोया को देखने लगा। साथ ही साथ जोया ने आज जो अबीर राठौर के शोल्डर पर काटा था वो बार बार उस घाव को छुए जा रहा था। जब जोया ने खुद को अच्छे से चारों ओर से कवर कर लिया तब एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। तब अबीर ने उसे देखकर कहा, तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते कोई गैर आदमी तुम पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। ऐसा कहकर अबीर मुस्कुराने लगा और सामने स्क्रीन पर चल रही जोया को लाइव देखता रहा। कुछ ही देर में अकरम का घर आ गया था। वो ड्राइवर उन दोनों को ड्रॉप करके वहाँ का एड्रेस नोट डाउन करके चला गया था, ठाकुर मेंशन। वहीं दूसरी ओर अरमान राजवीर के साथ ठाकुर मेंशन लौट आया था। अरमान को रह रहकर अनुराधा का फेस याद आ रहा था। अनुराधा जिस नज़र से अरमान को देख रही थी बस वही उसे बेहद अजीब लग रही थी। वहीं राजवीर भी काफ़ी उलझनों में था। अरमान के द्वारा कही गई एक एक बात उसे याद आ रही थी। राजवीर आते ही सबसे पहले अपने कमरे में चला गया। उसने देखा मेहर वहाँ नहीं थी, तभी वो मेहर को ढूंढता हुआ अरहम के कमरे तक जा पहुँचा, और उसने देखा मेहर अरहम के हाथों पर अपना हाथ रखे हुए थी और उसे कुछ समझा रही थी। तभी राजवीर अंदर चला गया और बोला, मेहर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेहर को वो सब याद था जो राजवीर ने उसके साथ किया था। राजवीर के साथ रहकर उसको जोया के बाप भाई की याद आती थी। उन्हें भी तो केवल मेहर का शरीर ही चाहिए था, और उसी तरह राजवीर था, वो भी तो केवल उसके शरीर के लिए उसके पास आता था। राजवीर ने मेहर का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेहर, उस वक्त मैं टेंशन में था इसलिए तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर बैठा। मैं आशा करता हूँ तुम सब कुछ भुला जाओगी और हम एक नई शुरुआत करेंगे। राजवीर का इस तरह से माफ़ी मांगना मेहर को काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वो तो वैसे भी उसे अपना चुकी थी, चाहे वो हर रात ही क्यों ना ज़बरदस्ती करे उसके साथ। लेकिन अब इस तरह राजवीर को अपने आमने झुकता देख वो तो आसमान में उड़ने लगी थी। वहीं अरहम ये समझ चुका था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है और ये राजवीर किस बात की माफ़ी मांग रहा था। उसे एक बार फिर ज़ोया के साथ की गई ज्यादती याद आ गई और वो रोने लगा। मेहर ने अरहम को इस तरह से रोते हुए देखा तो वो उसे फिर समझाने लगी थी, जबकि राजवीर मेहर को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो चुका था, इसलिए वो अपने चेहरे पर एक स्माइल ले आया और वहां से निकल गया। राजवीर मन ही मन सोचने लगा कि ये मेहर कितनी बेवकूफ है, आसानी से मान गई। अब तो वो आराम से उसका इस्तेमाल करके इस तरह की एक्टिंग कर दिया करेगा और ये अरमान को कभी कुछ नहीं बताएगी। वहीं अरमान को तो पता भी नहीं था उसी की नाक के नीचे उसके घर में हो क्या रहा था। वो तो बड़ी ही शिद्दत से ज़ोया को याद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उसे। ज़ोया को ढूंढने का यूज़ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर ज़ोया इस शहर या देश में होती तो वो कुछ न कुछ करके उसे ढूंढ लेता, लेकिन उसका तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी अरमान सोच ही रहा था कि तभी उसके गांठ तेजा का फ़ोन आया और उसने कहा, बॉस, मैडम की एक लीड मिली है। ये सुनते ही अरमान का चेहरा खेल उठा और वो बेसब्र होकर बोला, कहाँ मिली है, कहाँ है वो, कैसी है वो? तेजा, बॉस, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि हो ना हो मैडम अमेरिका में है। क्या? अरमान ये सुनते ही शॉक्ड हो गया और तेजा से कहने लगा, क्या बात कर रहे हो, अमेरिका? लेकिन तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? तब तेजा ने कहा, वो एक्चुअली सर, अकरम साहब ने जिस आदमी को हमारे पास ज़ोया मैडम की फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भेजा था, वो आज हमें मिल गया है और हमने गन पॉइंट पर उससे उगलवा लिया है कि वो लोग उस दिन मलेशिया नहीं बल्कि अमेरिका गए थे, लेकिन सर, प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पाई है। अरमान, ओ ओ ओके, खैर, तुम एक काम करो, उस आदमी को ठाकुर मेंशन में ले आओ, बाकी की पूछताछ मैं खुद करूँगा। तेजा, ओके बॉस, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। अरमान मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, फाइनली कुछ तो क्लू मिला, और अपने दिल पर हाथ रख कर बोलने लगा, बस कुछ दिन और रुक जा, फिर तेरे सुकून का सामान तेरे सामने होगा। इसका मतलब साफ था, ज़ोया अरमान के लिए कोई इंसान न होकर कोई चीज थी जो उसके दिल को सुकून पहुंचाती थी। ज़ोया के बारे में सोचते हुए अरमान बेड पर लेट गया था और अपनी आंखें बंद करके ज़ोया को अपने आसपास महसूस करने लगा था। वहीं दूसरी ओर अनुराधा ठाकुर फार्म हाउस से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसकी डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी और वो इलाज करते करते कहने लगी थी, ये क्या मैम, इस बार आपकी हालत काफ़ी बुरी लग रही है। मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बच्चेदानी किसी काम की नहीं रहेगी, और अगर आप अपना रेप इसी तरह से कराती रहीं तो फ्यूचर में आपके माँ बनने के चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अनुराधा हंसने लगी और बोली, देख, पहली बार तू मेरी ये हालत नहीं देख रही है।
डॉक्टर सोचने लगी, आखिर कैसी औरत है ये जिसे केवल अपना मकसद दिखाई देता है और अपने मकसद के लिए ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो डॉक्टर अनुराधा के पिछले 15 सालों से जानती थी और जो कुछ भी अनुराधा के साथ हुआ था वो उसकी इकलौती गवाह थी, इसलिए वो अनुराधा से कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी। अनुराधा ऐसी हालत में पूरे 9वीं बार उसके सामने आई थी, लेकिन इस बार राजवीर ने कुछ ज्यादा ही तबाही मचाई थी उसके जिस्म पर, जिसे देखकर वो डॉक्टर कहे बिना नहीं रह पाई थी कि अगर एक बार और किसी ने तुम्हारे साथ इस तरह से ये सब कुछ किया तो तुम्हारे माँ बनने के चांसेस हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अनुराधा ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी और बोली, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे अपनी जान संभाल कर रखनी है, और रही बात मेरे जिस्म की, शायद तुम नहीं जानती, मेरा जिस्म मेरा सबसे बड़ा हथियार है मेरे इस खेल में। अब तुम जल्दी से मेरी मरहम पट्टी कर दो, मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है, मेरा एक ज़रूरी क्लाइंट आने वाला है। डॉक्टर ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, रुको, तुम लेटो, मैं दवाई लगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो डॉक्टर अनुराधा के जिस्म के हर हिस्से को स्प्रिट लगाकर साफ करने लगी और दवाई लगाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अकरम बेसब्री से ज़ोया और रिया का इंतज़ार कर रहा था। वो काफ़ी बेचैन था क्योंकि जिस तरह से ड्राइवर के साथ उन दोनों का खरीदा हुआ सामान घर आया था, तभी उसके दिमाग में शक पैदा हो चुका था कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वो एक पुलिस वाला था और जब उसने ड्राइवर से कड़ी पूछताछ की तब उसका शक यकीन में बदल चुका था। ड्राइवर ने केवल इतना ही बताया था कि वो दोनों मैडम किसी दूसरी गाड़ी में गई हैं। अकरम समझ चुका था कि कहीं कुछ ना कुछ मसला तो ज़रूर है। अब अकरम ने सोच लिया था कि अगर अगले 10 मिनट वो दोनों घर नहीं आती हैं तो फिर वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। लेकिन अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि जोया और रिया दोनों आ गई थी। अक्रम उन्हें देखते ही बिजली की सी तेजी से उनके पास जा पहुंचा और अपने सवालों की झड़ी लगा दी। रिया, रिलैक्स अक्रम, रिलैक्स, और हम दोनों ठीक हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, उससे पहले जोया दी को उनके कमरे में छोड़ आऊँ, रिया ने अक्रम को सांत्वना देते हुए कहा। रिया जोया को लेकर उसके कमरे में चली गई और उसे आराम करने को कहकर उसके लिए कुछ बनाने किचन में चली गईं, क्योंकि जोया ने पिछले 4 घंटों से कुछ नहीं खाया था और इस हालत में ज्यादा देर उसका भूखा रहना उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी रिया ने एक बर्तन निकाला था कुछ पकाने के लिए, तभी किसी ने उसका हाथ तेजी से पकड़कर खींच लिया था। वी सब्सक्राइब गाइस, प्लीज लाइक्स, कॉमेंट्स एंड शेयर गाइस, फॉलो मी ऑल्सो, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस।